बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते ओम शांति। हम सभी के बीच बाबा के विशेष रतन, दीदी दादियों के विशेष पालना में पलने वाले यज्ञ के फेथफुल यज्ञ रक्षक राजू भाई जी का हम विशेष दिल से नयन मुलाकात करते हुए एक हाथ की ताली बजाकर स्वागत करते हैं। भाई साहब को बाबा ने और दादियों ने एक विशेष अधिकार दिया हुआ है, मुरली द्वारा। मुरली में जो हम वरदान सुनते हैं उसके द्वारा हमें पुरुषार्थ कराने का। और भाई साहब लगभग 40 वर्षों से यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और देश विदेश में घूम घूम कर बाबा की सेवा की है, और खास ग्राम विकास प्रभाग के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने हम सबको तपस्या का ये गोल्डन चांस दिया, मधुबन पांडव भवन की भट्टी का, और जब बरसात पड़ती है तो उसमें और आनंद आ जाता है। तो आज आपकी पहली बार काफी दिन के बाद बरसात भी स्वागत कर रही है। मधुबन तपस्वी भूमि में जहाँ पर स्वयं साकार मात पिता ने, दीदी दादी ने काफी समय रह करके इसी स्थान पर तपस्या की, बाबा के चारों धामों में जाते हो, कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितनी ऊर्जा है अंदर की, जाते ही योग लग जाता है। तो ये भूमि तपस्या भूमि है और इस भूमि में आते ही बाबा बच्चों को अच्छे अच्छे अनुभव करा देता है। अगर यहाँ कोई नया भी आता है ना, नया पहली बार वाला, आप सब तो बाबा के बच्चे हैं, कई बार आए होंगे, लेकिन अगर कोई नया भी आता है तो यहाँ देख करके उसको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। एक बार कोई एक ग्रुप आया था, कुछ अच्छे संतों का ग्रुप था, तो ये जो शांति स्तंभ के सामने से रास्ता है यहाँ तक, कहता है ये कि बहुत बड़ी बाउंड्री यहाँ जैसे कोई खींची हुई है, इस साइड में बड़े ऊंचे प्रकंपन हैं, बहुत ऊंचे वाइब्रेशन हैं, कोई यहाँ तपस्या करके गया है। तो ब्रह्मा बाबा जब इस कमरे में रहते थे और इस कमरे से निकल करके वो सैर करते थे वहां तक शांति स्तंभ तक, वहां खेलते थे, तो वो स्थान तो अपने आप में चार्ज है। कहता इस स्थान के इस साइड में कोई भी चला गया तो मुक्त हो जाएगा। तो आप सब तो रोज चार धाम की यात्रा कर रहे हो, बाबा के घर में इतने साधन सुविधाएं पहले नहीं थे, साइंस के साधन तो बाद में आए, और हम लोग आ गए थे 72 में, समर्पित हो गए, आए तो 71 में पहली बार। उस समय आप समझ सकते हो कितना छोटा घर होगा। अगर 100 लोग आते थे ना तो हम कहते थे बहुत बड़ी सीजन है, बहुत बड़ी पार्टियां आ गई, क्योंकि हम सबको अपने कमरे खाली करने पड़ते थे और उनके लिए गर्म पानी करना, उनको कमरों में पहुंचाना, और क्लास में अगर वो सब बैठ गए तो हम सब बाहर हो जाते थे। छोटा हाल ही था, छोटे हाल में 100 लोग से अधिक तो नहीं बैठ सकते। वो दिन भी प्यारे थे और आज देखो इतना विशाल बाबा ने स्थान बनाया, शांतिवन बना दिया, ज्ञान सरोवर बन गया, और 30-35 हजार भी आते हैं तो कहाँ सोते हैं कुछ पता नहीं, सब समा जाते हैं। लेकिन बाबा के घर की व्यवस्थाएं सब देख के बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, कैसे सब मैनेजमेंट चल रही है, कौन करा रहा है। क्योंकि आज मुझे टॉपिक पता क्या दिया, बहन ने रिपीट नहीं किया, अवस्था से व्यवस्था, श्रेष्ठ अवस्था द्वारा श्रेष्ठ व्यवस्था। तो इस टॉपिक के अनुसार अगर हम सब देखें तो यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके जो निमित्त रहे हैं, दादियां रही हैं, उनकी अवस्था का पता चलता है। क्योंकि आप व्यवस्थाएं उसी स्थान की अच्छी हो सकती हैं जहाँ की निमित्त आत्माएं बहुत ऊंची अवस्था में रहती हैं। अगर उनकी अवस्था जरा भी नीचे ऊपर हो जाए तो सारे कार्य की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो बाबा ने जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बना करके रखी हैं इस घर में, जो आने वाले नए पुराने सभी अनुभव करते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनरी जैसे चल रहा है, इनको कोई कुछ कहता ही नहीं है। इतनी अच्छी भंडारे में जाओ, व्यवस्था है, सफाई है, समय पर भोजन है, समय पर क्लास है, समय पर सब कुछ, निश्चित स्थान पर सब कुछ मिल रहा है, इनको कौन गाइड करता है, इनके पीछे कौन है। मैं समझता हूँ शायद नए जो राजयोग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अगर आप उनकी ओपिनियन के फॉर्म भर पढ़ो तो आपको 90% से ऊपर लोगों की होगी, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसी कहीं दुनिया में नहीं देखी। लेकिन इसके पीछे उसका आधार क्या है? उसका आधार है श्रेष्ठ अवस्था, और वो भी जो निमित्त है उनकी श्रेष्ठ अवस्था। एक दिन की बात मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि को देखा है सभी ने? जिन्होंने देखा हाथ उठाओ, काफी हैं, कुछ नए होंगे। 11 साल तो हो गए दादी को भी अव्यक्त हुए, तो 11 साल के पहले वाले तो सबने देखा ही है। तो दादी 3-4 साल पांडव भवन में इधर ऊपर माउंट में नहीं आई, क्योंकि थोड़ी ऑक्सीजन यहाँ कम होती है, जिसको सांस की थोड़ी भी बीमारी होती है तो उनको भारी हो जाता है बहुत। तो एक दिन लाए थे तो दादी यहाँ आई, और आए सारे दिन के लिए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही देखा दादी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो तुरंत नीचे लेके गए। तो एक दिन दादी जी ऐसे ही बैठी थी और मैं यहाँ से गया था, दादी जी के साथ बैठता था, रोज जाता था, मिलता था, क्योंकि हमारी कारोबार लिखा पढ़ी की ऐसी है जो हर चीज के लिए पूछना ही पड़ता है, पत्र व्यवहार मुरली। तो मैं दादी जी के साथ ऐसे ही बैठ के बैठा ही जा करके, तो दादी पूछती है सब कैसे चल रहा है? तो हमने कहा दादी बहुत अच्छा चल रहा है, यही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? दादी को यही कहा, दादी बहुत अच्छा चल रहा है। कहती पांडव भवन में सब ठीक है? हमने कहा हाँ सब बहुत अच्छा है। ज्ञान सरोवर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे मेरे को देख के कहती कैसे अच्छा चल रहा है? दादी आप बैठे हैं ना, आपके श्रेष्ठ संकल्पों से अच्छा सब चल रहा है, आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, श्रेष्ठ संकल्प है, ऊंचे ऊंचे विचार हैं, उन विचारों के प्रवाह से सब ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि साकार में अव्यक्त में भी बाबा ने बात कही है कि ऐसा दिन आएगा जो पूरे यज्ञ की कारोबार आप बच्चों के शेष संकल्प के आधार से चलेगी। आज आप देख रहे हो यज्ञ कैसे चल रहा है, इतनी सारी कारोबार चल रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, भट्टियां चल रही हैं, ज्ञान सभा अलग प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, और कोई बड़ी दादी पालना देने के लिए नहीं है, फिर भी सब इतने खुश होकर इतने रिफ्रेश होकर के जाते हैं। तो जब मैंने दादी को ये कहा कि दादी आपके श्रेष्ठ संकल्प से, शुभ संकल्प से सारी कारोबार चल रही है, तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी, कहती क्या बोला दादी आपके श्रेष्ठ संकल्प से। मैं कहती नहीं नहीं तुम भूल गया, बाबा के श्रेष्ठ संकल्प से चल रही, ये बाबा का यज्ञ है, बाबा चलाने वाला है, उसके जो श्रेष्ठ संकल्प है ऊपर से सारे हैंडलिंग कर रहा है। तो बाबा की यज्ञ के प्रति इतने बड़े कारोबार के लिए जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं और उनकी जो निमित्त बनी दादियां हैं उनके अंदर जो इतना स्नेह है, शक्ति है, शुभ संकल्प है, उससे यज्ञ की सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। कोई किसी को कहता नहीं है, कोई किसी का इंचार्ज नहीं है, कोई किसी के अंडर नहीं है, सब कार्य समय पर हो रहे हैं। ये सब सिद्ध करता है कि जो निमित्त हैं उनकी बहुत अच्छी भावनाएं हैं, बहुत अच्छे संकल्प हैं, बहुत अच्छी अवस्था है। तो कोई भी स्थान की अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिखाई देती, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उसकी क्या निशानियां होंगी, सब कुछ अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, जहां देखो वहां सब पड़ा हुआ है, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ प्लान बनाए कुछ प्रैक्टिकल किया कुछ नहीं हुआ। अगर आज बाबा के बच्चे जो कहते हैं मेरे साथ स्वयं भगवान कार्य करा रहा है, करण करावनहार वो है, उनके किसी की भी कार्य में किसी भी स्थान पर कोई भी व्यवस्थित चीज नहीं है, माना उनका कनेक्शन उससे नहीं है, उनकी अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर डिस्टर्ब रहती है, तो सबसे पहले हम सबको अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रेष्ठ अवस्था किसको कहा जाता है, किसको कहेंगे, जिस अवस्था में स्थिति एक रस रहे, मूड एक रस रहे। सबसे बड़ी बात है ये मूड जो बदलती है ना घड़ी घड़ी, कई बार कई बहुत मूडी होते हैं, एक सेकेंड में बड़े उमंग गुस्सा में रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ हो गया, मान सान नहीं मिला, कोई ने कुछ कह दिया या कोई इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ, मूड खराब हो जाती है, स्थिति उसको क्या कहेंगे। बाबा कहता है सोडा वाटर है, ऊपर चढ़ा पारा फिर एकदम नीचे गिर गया। तो अच्छी स्थिति उसको कहेंगे जिसमें आंतरिक स्थिति बहुत अच्छा लडोल एक रस है, हिलती डुलती नहीं है, जल्दी जल्दी निंदा स्तुति मान अपमान की जो प्रभाव पड़ जाता है उस प्रभाव में वो नहीं आती। तो हम सब एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति, बड़ी खुशनुमा स्थिति, ऐसी अवस्था अगर बना करके रहते हैं, और वो अवस्था जिनका अपनी पढ़ाई पर, योग पर, अपने आप पर ध्यान है। कई बार ऐसा होता है बाबा के बच्चे बनते हैं, उमंग गुस्सा आता है, सेवाओं में बहुत लग जाते हैं, सेवाएं सब प्रकार की करते हैं, खूब विस्तार करेंगे सेवाओं का, लेकिन अपनी अवस्था बनाने के लिए समय नहीं देते। आवश्यकता है हम सबको समय अनुसार अपनी अवस्था पर बहुत ध्यान देना है, कभी भी कोई बातें हों नीचे ऊपर, क्योंकि कलयुग के अंदर हम सब जी रहे हैं और कलयुग सतयुग का संगम है, तो इसका भी प्रभाव है उसका भी प्रभाव है, संगम है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो सबके सामने आती हैं, और उन परिस्थितियों को अगर हम बड़ी सरलता के साथ श्रेष्ठ स्थिति के आधार से पार नहीं कर पाते, एकदम कभी उमंग गुस्सा एकदम चढ़ा हुआ है और कभी एकदम डाउन हो जाता है, तो क्या कहेंगे, इसकी अवस्था एक रस नहीं है, इसने अपनी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जब साधन मिलते हैं, विशेष एकांत में आते हो, तपस्या करते हो, भट्टियां करते हो, क्लासेस करते हो, तो इसका एक हमारा लक्ष्य रहता है कि हम सब अपनी अवस्था को अच्छी तरह से मजबूत बनाएं, ऐसी मजबूत बनाएं जो कहते हैं यादगार में दिखाया है, अंगद की कहानी आप सबने सुनी होगी। राम के दूत जब रावण की लंका में गए तो आप सबने कहानी बहुत रमणीकता से पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि उसका पहले रावण ने आदर करने की बजाय उसको बहुत चढ़ाया कि देखो तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे बाप को तो राम ने छल से मार दिया, बाली का पुत्र दिखाते हैं ना, छल से मारा और उसको तुम साथ दे रहे हो, तुम तो हमारी सेना में आ जाओ। लेकिन उसको बहुत निश्चय था, पक्का, जैसे राम का दूत था, तो उसको देखा ही हिलता ही नहीं है तो उसका अपमान करने लगा, उसको बैठने के लिए आसन नहीं दिया, वो तो दूत था, दूत को तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता था। लेकिन कहते रावण के दरबार में जब उसको सम्मान नहीं मिला तो उसने अपनी पूंछ को निकाला और उस पूंछ का आसन बनाने लगा, और पूंछ का आसन ऐसा बनाया जो रावण के सिंहासन के समान बन करके जब उतना ऊंचा हो गया तो उस पर बैठा जाके, और फिर डायलॉग करता है कि आपको राम की सीता वापस कर देना चाहिए, नहीं तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। बहुत उसको समझाने की कोशिश की, अब उसको तो अहंकार चढ़ा हुआ था, वो कैसे मानेगा। फिर उसने कहा अच्छा आपके यहाँ कितने सेनानी हैं, क्या क्या है, कैसे हैं, मैं पांव जमाता हूं और कोई एक भी मेरे पांव को हिला करके दिखा दे, अगर पांव को हिला देगा तो सीता उसकी हो जाएगी। बहुत बड़ी चैलेंज कर दिया, जब सीता पर तो उसका अधिकार नहीं था, लेकिन जानता था सीता तो रावण की हो ही नहीं सकती, और जब हो ही नहीं सकती है तो ये पांव कौन हिला सकेगा, निश्चय का एक अंदर का विश्वास था। कहते उसने अपना पांव जमा दिया और जितने उसके सेना में थे बड़े बड़े योद्धा वो सब आए, कोई ने भी उसके पांव को हिला नहीं पाया। रावण को बड़ा गुस्सा आ गया, तो रावण जब खुद उठा तो उसके आते ही गुस्से में आया, सामने जब आया तो उसने पांव अपना पीछे खींच लिया और कहा तुम मेरे पांव के आगे क्यों झुकते हो, राम के पांव के आगे झुको। अब इतनी बेइज्जती हुई तो उसको इतना गुस्सा आया, कहते उसका गुस्से में ताज गिर गया, और जब वो ताज गिरा तो उठा करके अपने राम के दल में फेंक दिया अंगद ने। अब ये सब कहानियां हैं, लेकिन संगम का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। संगम के समय पर हम सब जब किसी के पास जाते हैं संदेश देने के लिए, कहीं भी सेवा के लिए जाते हैं, सम्मान नहीं मिलता है, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है। बाबा कहता है तुमको मैंने इतनी ऊंची पूंछ सम्मान और सम्मान की दी है, निकालो अपनी पूंछ, चिंतन करो, अच्छा अच्छा मैं किसका हूं, मुझे किसने भेजा है, और उस सम्मान की पूंछ पर उस सम्मान के नशे में बैठ करके फिर किसी से बात करो, वो दे या न दे। दुनिया में कोई मान देगा कोई अपमान करेगा, आज मान देगा कल अपमान कर देगा, और इतना निश्चय हो कि हम तो भगवान की सेना के, कोई भी मुझे हिला नहीं सकता, तो माया कितने भी बड़े रूप में आए, किसी भी विकराल रूप में आए, कैसे भी उसके योद्धे हों, हम सबको संपूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हम हैं, सर्वसमर्थ है, सबको शक्ति देने वाला दाता, और उसके बच्चे कभी भी जरा भी अपनी अवस्था को किसी भी बात डगमग न होने दें। तो ऐसी अवस्था चेक करना, यहाँ आए हो तो चेक करना कि कलयुग के अंदर कहीं भी किसी भी वातावरण के बीच में हम जाते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, प्रॉब्लम्स कई प्रकार की आती हैं, लेकिन क्या हमने अपनी अवस्था इतनी मजबूत बनाई है, कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। तो अगर ऐसी दृढ़ संकल्प से अपनी अवस्था मजबूत बना लो, बहुत अच्छी एकाग्र चित्त स्थिति द्वारा बाबा की शक्तियों को कैच करो और उन शक्तियों के आधार से उसके साथ का अनुभव करो। वो मेरे सदा साथ रहता, अलग हो ही नहीं सकता, और इतना गुप्त रूप से साथ रहता है क्योंकि उसको ज्यादा स्थान नहीं चाहिए। प्यार करो, याद करो, बाबा कहता है एक सेकंड में मैं आ जाता हूं बच्चों के साथ, एक सेकंड से भी कम समय लगता है, सेकंड तो आपकी दुनिया का है। आप संकल्प करो, प्यार से बाबा कहो और मैं हाजिर हो जाता हूं। जब संगम पर इतना साथ निभा रहा है फिर भी कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है, माया तो कई रूप में हमें आ रही है, कहीं ईर्ष्या द्वेष की आग लगी हुई है, कोई आगे बढ़ता है उसका कोई पीछे खींचता है, कहीं अनुमान बहम ईर्ष्या अहम बहम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कलयुग के अंदर जो लोगों को बार बार डगमग करती हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए हम सब अपनी अवस्था पर ध्यान दें। अगर हमारी अवस्था एक रस है, मूड खुशनुमा है, जरा भी हलचल में नहीं आती है, निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सब में समान स्थिति है, क्षमा भाव है, दया भाव है, तो मैं समझता हूँ अवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। और अवस्था अगर अच्छी है तो उसकी बहुत सारी निशानियां व्यवस्था के अंदर दिखाई देंगी। जिन आत्माओं ने अपनी अवस्था बनाई उनकी चार पांच निशानियां मैं आपको सुनाता हूं, प्रैक्टिकल देखा है हमने। एक तो उनके संकल्पों में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मकता, बहुत शुद्ध विचार हैं, कभी वो साधारण नेगेटिव संकल्प नहीं करते। संगठन में जब हम चलते हैं रहते हैं, आज यज्ञ जी जो इतना वृद्धि को और व्यवस्थित रूप से बढ़ा है उसके पीछे बड़ों का फेथ विश्वास, हर आत्मा के प्रति उन्होंने बहुत अंदर से विश्वास किया, ये बाबा के बच्चे बहुत सच्चे हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं, और विश्वास रख करके आज इतनी सारी कारोबार अपने होते ही सौंपते गए, अपने ऊपर नहीं रखा सब कुछ। आज कोई व्यक्ति अगर सब कार्य अपने ऊपर लेकर के चले तो कर सकता है क्या विस्तार के अंदर? उसको साथी बनाने ही पड़ेंगे। व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए कोई एक ही निमित्त कहे मैं ही सब कुछ कर लूंगा, आज अगर मैं अपनी पूरी डिपार्टमेंट को ठीक व्यवस्थित चलाना चाहता हूं तो अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे टीम चाहिए। और टीम को एक साथ लेकर के चलने के लिए जिस प्रकार की उस व्यक्ति की क्वालिटी है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अनुसार उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको उस तरह का सम्मान देना पड़ेगा, उसको उस तरह की चार्ज देनी पड़ेगी। और जब हम सब में विश्वास रख करके उसको कार्य सौंपने लगते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो मैंने देखा है वो धीरे धीरे योग्य बन जाता है। योग्यताएं कोई हम लेकर के सब नहीं आते हैं, ये तो योग्य नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। अगर यही सब सोचा होता, आप सोच सकते हो, थोड़ी सी बात मैं अपने अनुभव की बताता हूं, अगर दादियों ने ये बात सोची होती कि ये डिपार्टमेंट जो मैं इसको दे रही हूं, ये तो छोटा है भाई, 15-16 साल का मैं था, ये तो स्कूल कॉलेज पढ़ा नहीं, इतना बाहर के ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं है ज्यादा, और इसको इतनी बड़ी डिपार्टमेंट। मैं तो कभी कभी कहता हूं बाबा आपके इस यज्ञ के अंदर बहुत एमए बीए डबल पढ़े हुए हैं सब कुछ, उनको आप ये डिपार्टमेंट देते तो शायद इसको और सक्सेस कर देते, हमको आपने ये डिपार्टमेंट क्यों दिया, दादियों ने हमें क्यों इस निमित्त बनाया, जिसने कभी स्कूल कॉलेज बड़ी डिग्रियां नहीं ली उसको सारी पढ़ाने की ड्यूटी दे दी, और जिन्होंने डिग्रियां ली उनको भंडारे की ड्यूटी दी हुई। बड़ा वंडरफुल बाबा है हमारा, उसके पीछे कई राज हैं, वो हम भी क्लास कराएंगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन
करण करावनहार बाबा है, कोई व्यक्ति ये न कहे कि मेरी बुद्धि से सारा कार्य हो रहा है, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं योग्य हूं, मैं अनुभवी हूं, क्योंकि आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्बेंस है व्यवस्थाओं में, उसका कारण है कि जो निमित्त है उसके अंदर अहम भाव है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जो कह रही हूं वही राइट है, मैं जो कहूंगा वही राइट होगा, उसके पीछे टकराव पैदा होते हैं। अगर वहां वो निर्माण चित्त हो जाए कि नहीं, ये जो हमारे साथी हैं हमसे अच्छे हैं, अच्छे होशियार हैं और ये सब अच्छा करें, विश्वास, दादियों ने इतना विश्वास रखा कि बाबा के बड़े सच्चे ईमानदार बच्चे, कराने वाला तो बैठा है पीछे, ये सिर्फ हाँ जी कर ले, इनसे सब करा लेगा। हम लोगों ने यहां पर देखो, मधुबन की सारी कारोबार जो आज चल रही निर्विघ्न रूप से, उसके पीछे बड़ों ने इतना विश्वास रखा और विश्वास रखकर के इतना सम्मान दिया, जो कभी गलत करने का संकल्प भी नहीं आता, और करेंगे, अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा, कल की मैं बात बताता हूं, मेरे बाबा ने ड्यूटी दी है पत्र पुष्प बनाने की, दादी का पत्र लिखने की, दादी जर्मनी में है, अब इस समय लंदन, कभी कभी जर्मनी, कभी कहीं, कभी कहीं, और बिना दादी को पढ़ाए हुए तो नहीं भेज सकता, उनकी साइन मैं कर रहा हूं दादी जान की, बीके जान की। दादी को कल मैंने ईमेल किया कि दादी ये पत्र अभी बहुत लेट हो रहा है आपका, जाएगा। दादी ने पढ़ा, तुरंत 5 मिनट में पढ़ते ही मुझे भर करके आवाज भेजी, और कुछ उनके और विचार चल रहे थे वहां, जो क्लासेज हो रही हैं, रिट्रीट चल रही है जर्मनी में टीचर्स के, तो कहा इस पत्र में अगर कोई इस बात ऐड कर सकते हो तो ये ऐड कर लेना, और नहीं हो सकता है तो ये पत्र भले भेजो, हमारी तरफ छुट्टी है, आगे के पत्र में डाल देना। माना इतना निर्माणता से कोई बात कहना, इशारे से कहना, करेक्शन न करना लेकिन उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना, इस तरह का फेथ। आज इतने सालों से यज्ञ की कारोबार दादी के साथ रहे, दादी के बाद रहे, और दादी के होते हुए भी हम कहते हैं दादी आप नहीं लिखाती हैं, मैं आपके नाम से लिखता हूं ना, मुझे कभी कभी ख्याल चलता है अरे तुम तो मेरे से अच्छा लिखता है, तेरे से बाबा लिखा था, दादी की आशीर्वाद है, हो जाएगा, तुम लिखो, तुम लिखो। तो एक विश्वास रखा, और विश्वास के कारण हमने जो कार्य किए बाबा को, दादियों को आगे रख करके, कोई करेक्शन नहीं करता है, और कोई ये नहीं कहता है दादी का शब्द नहीं है, ये इनका शब्द आ गया इसके अंदर, ये बाबा के शब्द नहीं है वरदान में, ये राजू भाई के शब्द आ गए, बाबा के शब्द हैं। बाबा के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हमने नहीं लिखा है, लेकिन उसको रूप जरूर दिया है, सेट किया है, सेटिंग की है। ऐसे बाबा ने कभी भाव करके तो बोला ही नहीं है, सफलता मुहूर्त भाव, संतुष्ट मणि भाव, हर्षित मुख भाव, प्रसन्न चित भाव, कितने सारे वरदान बाबा के मिले हैं, तो उस लाइन को सेट तो जरूर किया, लेकिन स्पष्टीकरण के अंदर कभी कोई एडिशन करेक्शन नहीं की, जो बाबा ने स्पष्ट बताया वही लिखा है। बुद्धि अपनी चलाने की भी जरूरत नहीं है, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, और उसमें जिसका विश्वास है कि उसका ये यज्ञ चल रहा है वो कराने वाला है, स्थापना का कार्य होना ही है, और सब अच्छे से अच्छा होना है, हम सिर्फ निमित्त बन करके हाँ जी करें, बस अपनी बुद्धि न चलाएं। जहां पर किसी भी निमित्त आत्मा के अंदर अहम और बहम का भाव आ गया, वहां टकराव की स्थिति पैदा होगी, और जहां टकराव की स्थिति होगी वहां व्यवस्थाएं कभी सुचारू रूप से ठीक नहीं चल सकती। इस पर ध्यान देना आप, व्यवस्थाओं में अगर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कार्य कब हो रहा है, कहीं अभी टाइम दिया गया 2 घंटे के बाद कोई आ रहा है कर रहा है, 4-6 घंटे लेट कर दिया, पूछो क्यों नहीं किया, बहानेबाजी बताएंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी समर्थ नहीं है, इतनी उसके प्रति शुभ भावना नहीं है कि करेगा, अभी करेगा, जरूर करेगा, इतना फेथ, इतना प्रेम दिया, निस्वार्थ भाव से प्यार और पालना दी। आज जो इतने यज्ञ की कारोबार देख रहे हो आप सभी, अच्छी चल रही है, उसके पीछे दादियों ने बहुत प्यार से हम सबकी पालना की, बहुत दिल से पालना दी है, और 1 साल नहीं, जब तक साथ रहे हैं हर चीज का ध्यान रखा। कोई बीमार पड़ गया है तो ऐसे नहीं दादियों ने छोड़ दिया, नहीं, दौड़ करके देखने जाना, मिलना, उनको क्या चाहिए, उनको सेल्वेशन क्या चाहिए, इस समय किस चीज की आवश्यकता है, अकेले नहीं छोड़ दिया। बीमार है तो उसको पूछना नहीं, देखना नहीं, बात नहीं करना, फिर ठीक होगा तो फिर काम ही नहीं करेगा, कहेगा हमको कौन पूछता है, हम तो इतना करते यज्ञ में। एक बार मैं बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी आई 84 में यज्ञ के अंदर। ऐसी बीमारी थी जो मुझे कोई देखता था तो चेहरे से कोई नहीं कहता था ये बीमार है। और यही बरसात के दिन थे, जुलाई का महीना था, खूब बरसातें पड़ रही थी। मैं एक सीढ़ी चढ़ू, गिर जाऊं, हाथ पैर दोनों पोलियो जैसे हो गए, एकदम शक्ति नहीं रही, बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। उसका कारण था कोई दवाई साइड इफेक्ट कर गई, सारी नसें ब्लॉक हो गई ब्लड की सर्कुलेशन की। तो यहां एक डॉक्टर था, उसने अपने हॉस्पिटल तो नहीं थे, तो डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर बड़ा रमणीक और मजाकिया थोड़ा था। तो देखते कहता है मेरे चेहरे से, तो मैं मुस्कुरा रहा था, बात कर रहा था, कुछ था नहीं, ऐसे हाथ लगाया ऐसे ऐसे देख करके, कहता इनको तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आपको, शायद पद यात्रा निकल रही ना आपकी, युवा पद यात्रा, आप पद यात्रा में जाना नहीं चाहते हो, ऐसा उसने जवाब दिया, जो उसको बोल भी नहीं सकता था मेरे कोई तकलीफ है। ऐसे हंसी हंसी हम सब भाई जो हमारे को लेके गए थे उनको बोल दिया कुछ नहीं है इनको, कुछ नहीं है तो भाई लोग क्या समझेंगे, और मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या हो रहा है, मेरे को तकलीफ पता नहीं चलती। मेरे को गाड़ी में बिठा के ले गए, मैं उधर अनादरा तरफ गया, उन्होंने समझा इसको थोड़ा माइंड चेंज करेंगे, कुछ सोचा होगा, हो गया होगा कुछ। दादी को पता चला, दादी ने देख लिया, दादी कहती नहीं तुमको यहां भी फागी के अंदर नहीं रहना, इस मौसम में तुम संगम भवन चले जाओ। संगम भवन गया, उसी समय भेज दिया दादी ने सीधा ही कि ये फाग के अंदर इसकी नसें शायद काम नहीं कर रही इसलिए गिर जाता। संगम भवन में गया तो वहां का जो डॉक्टर था उसने मुझे देखा, तराबू अब रोड का, और उसने देखते ही पहचान लिया, और उसने इंजेक्शन पर इंजेक्शन 3, 4, 5 एक के बाद एक, एक घंटे के बाद, दो दो घंटे बाद इंजेक्शन देने लगा। मैं क्या हुआ है इतना सारा इंजेक्शन लगा, कहता ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी आ गए हो, 2-3 दिन आपका लेट हुआ है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लूंगा। उसने 5 दिन रखा मुझे आबू रोड में, हॉस्पिटल में नहीं रखा, सेंटर पर ही रहे हम, घर में ही रहे, लेकिन इंजेक्शन देता था 3-4-5। फिर उसने रेफर किया अहमदाबाद पालनपुर, पालनपुर में गया तो पालनपुर में 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। दादी जी ने चैन नहीं लिया, एक दिन ईशु बहन को भेज रही, एक दिन मोहिनी बहन को भेज रही, एक दिन निर्भयर भाई को भेज, जाओ उसको देख के आओ, जाओ मिल के आओ। जब 12 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा अब 1 महीना इसको फिजियोथेरापी करनी पड़ेगी, अहमदाबाद भेज दो। तो अहमदाबाद में अपने सेंटर पर गया, फिजियोथेरापी करता था। सुबह सुबह बाबा से वो एक संदेशी थे, उससे पूछते थे अभी क्या करना है मुझे, अभी क्या करना है, तो बाबा भी बड़ी रमणीकता से जवाब देता, इसको आटा दे दो, आटा गूंदेगा ना, ऐसे ऐसे ताकत आ जाएगी खेल खेल में। तो मेरे को आटा देते थे, मैं गूंद देता था ऐसे ऐसे करके बैठ करके, तो हाथों में एक मतलब चाहे वो बॉल दबाओ एक्सरसाइज के लिए, चाहे आटा गूंद दो। और दादी जी ने क्या किया, दादी जी ने सब सेंटर्स को बोला राजू के पास बहुत ज्ञान है, बहुत मुरलियां टाइप की है उसने शुरू से लेकर के, इसको बैठने नहीं देना, सुबह शाम इसको अपनी क्लास में ले जाना और इसका क्लास रखना, ये जो क्लास कराने की आदत बनी ना उसी बीमारी से बन गई। रोज सुबह गाड़ी आती थी, शाम को आती थी, कभी क्लास कहीं, कभी अहमदाबाद में 20-25 उस समय भी सेंटर थे, अभी तो बहुत है 50-60 होंगे। तो हर क्लास वाले आते थे सुबह, मुझे उठा के बिठा लेते थे गाड़ी में, क्लास करा के आ जाता था। जब 15-20 दिन हो गए तो दादी को आया कि अभी तक नहीं छुट्टी मिली है डॉक्टर की, यहां से दादी ने उठाई गाड़ी आ गई। और आई तो सब बहनें आती हैं स्वागत करने देखने के लिए, दादी ने कुछ नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, जिस कमरे में था सीधा आई तो मैं खड़ा हो गया ऐसे, और खड़ा हुआ, और खड़ा होते ही दादी ने ऐसे झप्पी पहनी, ऐसे गोद में लिया, और मैं समझता हूँ 10 मिनट तक मैं देखता ऐसे ही समा गया जैसे। और उसके बाद कहती कुछ नहीं तेरे को, अब चल तू मधुबन में, छोड़ दे सब, सब ठीक हो गया। ऐसे दृष्टि दी, शक्ति दी, समान बनाया, ऐसे जैसे समाया, और कहती मैं दूसरे दिन मधुबन से यहाँ आ गया। आया तो डॉक्टर ने कहा था अभी तुम टाइप नहीं करना, और मेरा धंधा यही, मैं टाइप कैसे छोड़ूंगा मैं।
तो दादी ने मुझे एक साथी दिया सहयोग के लिए, साथी मिला। मैं अकेला ही करता था, 5 बार 6 बार स्टेंसिल काटना, उनकी करेक्शन करना, उनसे प्रश्न उत्तर निकालना, पूरा दिन ही मेरा ये धंधा हो गया था टाइप का। तो साथी मिला, सहयोग मिला, और साथ साथ मैंने कहा डॉक्टर को बोलने दो, हमारा सुप्रीम सर्जन कहता है ये मुरली डिपार्टमेंट तुम्हारी है, संभालो। मैंने पहला स्टेंसिल काटा, जो पहले 10 मिनट में काटता तो 8 मिनट में काटा, स्पीड बढ़ाई, नई उंगलियां चलती चलेंगी, बाबा चलाएगा। फिर धीरे धीरे 2-4 साल के बाद कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर सिखा दिया बाबा ने, अभी तो सब कारोबार ठीक चला। मैं कहने का भाव है कि पालना, स्नेह, उनका विश्वास, उनके द्वारा जो हम सबको शक्ति मिली, उन्होंने अपनी स्थिति के आधार से, अपनी अवस्था के आधार से इतने बड़े संगठन को एक बना करके चलाया, और उसके कारण ये व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। ऐसे नहीं व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो ऑटोमेटिक सारी मशीनरी यज्ञ की चल रही है उसके पिलर्स को अगर आप देखेंगे, पालना मिली है, स्नेह मिला है, सम्मानजनक बोल मिले हैं, सब बातों में आगे रखा गया है अंदर अंदर। आज कितनी खरीदारी होती हो, कितना अनाज आता है, कितनी वैरायटी सामान भंडारे के लिए आता होगा, कौन लाता है, कहां से आता है, पता है? कुछ नहीं पता चलेगा आपको। लेकिन दादियों ने जो पालना जिनको दी, जिनको इतना रिगार्ड दिया, जिनके ऊपर फेथ रखा, वो सब ऐसे कर रहे हैं जो न मान की इच्छा है, न शान की इच्छा है, न आगे आते हैं, न स्टेज पर आते हैं, न बाबा से टोली लेने के लिए भागते हैं। अरे बाबा का खा रहे हैं, बाबा के घर में पल रहे हैं, बाबा सब कुछ दे रहा है, हम एक धक्का धुक्की करके टोली लेने के लिए जाएंगे क्या? क्यों हम धक्के खाएंगे? उल्टा नशा नहीं है, लेकिन अपना ऊंचा सम्मान है और सम्मानजनक व्यवहार है। कभी डिस्टर्ब नहीं है, किसको मिल रहा है, इसको बुलाया जा रहा है, इससे झंडा लहराया जा रहा है, इससे केक कटाई जा रही है, हमको क्यों नहीं बुलाया जाता? नहीं बुला, कोई जरूरत नहीं, कोई इच्छा अपेक्षाएं नहीं है। बाबा ने बहुत कुछ दिया है और दे करके इतना संपन्न बनाया है, और अभी भी दे ही रहा है दाता बन करके। हम सभी भी अगर अपनी व्यवस्थाओं को ठीक रखना चाहते हैं, सेंटर्स की व्यवस्थाओं को यथार्थ चलाना चाहते हैं, घर और कारोबार को यथार्थ चलाना चाहते हैं, तो परिवार में हर एक व्यक्ति को समान रूप से प्यार, अधिकार, सम्मान, अच्छे बोल, उमंग, उत्साह के देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आज जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, जहां की भी हैं, कोई चीज कहीं पड़ी, किसी सेंटर पर जाते हैं तो देखो सब बिखरा पड़ा है, और कई सेंटर पर जाते हैं सब कुछ व्यवस्थित है, सब ऑटोमेटिक चलता है। कई जोन में मैं जाता हूं, अभी भी मैं इंदौर जोन के 3-4 सेंटर पर था, जबलपुर, सिवनी, इधर था, 2 दिन पहले आया हूं। और भाई जी ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं अपने जोन की बनाई हुई थी, हर चीज व्यवस्थित। आप कोई एक नुक्स नहीं निकाल सकते हो कि अभी कमरे में हम गए हैं, हमारे लिए ठंडा गर्म पानी नहीं है, नहाने की व्यवस्था ठीक है, बाथरूम सब ठीक है, इनका सोने का बिस्तर ठीक है, उनकी हर चीज ठीक है, उनको समय पर सब मिलनी चाहिए। उन्होंने सेटअप किया, उन्होंने सिखाया, और सिखाने के बाद अभी वही तरह से अगर वो फॉलो किया जा रहा है, सब दिखाई देता, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही। और कहीं कहीं जाओ, डिमांड कर मांगते रहो, भाई ये चीज की कमी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कहीं जाओ तो ऐसे लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। जो निमित्त आत्माएं हैं, अगर उन्होंने अपनी अवस्था और व्यवस्था पर ध्यान दिया है, तो यज्ञ की बहुत सारी कारोबार, सारे सेंटर्स के कारोबार जो नेचुरल और ऑटोमेटिक चल रही है, उसके पीछे निमित्त आत्माओं की अवस्थाएं हैं। और हम सबको ऐसे नहीं, निमित्त 2-4 हैं, जिस सेवा के लिए आपको ड्यूटी मिली है, जिस सेवा के लिए बाबा ने आपको जवाबदारी दी है, उसको निमित्त समझ करके उसी तरह से चलाओ, सब व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। लेकिन आंतरिक स्थिति को डगमग होने नहीं दो, अपेक्षाएं नहीं रखो, ये कुछ करे तो मैं करूं, इसने नहीं किया मैं क्यों करूं, ये जो अपेक्षाएं हैं, बाबा कहता है यही डिस्टर्बेंस है। कोई किसी से अपेक्षा नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं, करण करावनहार बाबा है, सब कुछ भरपूर कर रहा है। कोई चीज मैं समझता हूं बाबा के घरों में, बाबा के केंद्रों में, बाबा के बच्चों के पास, इस समय भी कलयुग के अंदर कोई कमी नहीं रखी है, सब कुछ भरपूर है। जिसने बाबा के लिए कुछ भी किया है,
थोड़ा भी किया है तो बाबा ने उसको कई गुना रिटर्न करके इसी संगम पर दिया है, भविष्य की बात छोड़ दो। तो श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, बहुत आत्मिक स्नेह और निस्वार्थ रूप की पालना, सम्मानजनक व्यवहार, विश्वास पात्र और कथनी और करनी में समानता। कथनी अलग है, करनी अलग है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कई लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, हमारे यहाँ ये सेवा हो रही, यहाँ सेवा हो रही, यहाँ केवल अखबार और फोटो तक होती है, अंदर कुछ नहीं होता। कहते हैं ढोल में पोल दिखाई देता है, पता चलता है कि ये लोग दिखाते क्या है, बताते क्या है और करते क्या है। जब प्रैक्टिकल जाओ, कथनी करनी एक नहीं दिखाई देती तो लगता है कि व्यवस्थाएं क्या है आखिर। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्यों हम इतनी कथनी करें, क्यों हम इतना शो करें, करके दिखा दें। अगर सचमुच कोई करके दिखाता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाबा के घर में जो छाप लगती है वो यही लगती है कि जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है। अगर आज सवेरे का अमृत वेला योग हम बाहर वालों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और निमित्त आत्माएं और समर्पित भाई बहने अगर सोए पड़े हों तो कभी किसी को विश्वास नहीं होगा कि हाँ अमृत वेले का कोई महत्व है। वो खुद उठ रहे हैं, खुद समय पर जा रहे हैं, क्लास में हाजिर हैं, योग कर रहे हैं, तो आने वालों को लगता है कि हाँ ये जो कहते हैं ये करते भी हैं, ऐसे नहीं कहते। आज हमारी खान पान नियम मर्यादाएं जो ईश्वरीय बनी हुई हैं, अगर हम दूसरों को कहते हैं ये हमारे योगी जीवन का फाउंडेशन है और हम योगी हैं, लेकिन हम योगी अगर उनकी दृढ़ता के साथ पालना नहीं कर रहे हैं और दूसरों को कहें ये फाउंडेशन है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कितनी भी बातें कर लो। तो हम सबको अपने नियम मर्यादाएं जो बाबा ने बनाई हैं, हमारे अगर जीवन में आती हैं, दिखाई देता है लोगों को कि जो कह रहे हैं वो सचमुच हैं। आज कोई मान लो घटना घटती है, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आजकल के कलयुग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने देखी है, नोट की है, सेंटर्स पर गया हूं, भाई बहनों से मिला हूं, माँ बाप बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, जवान बच्चे 15 साल 20 साल के अचानक शरीर छोड़ जाते हैं, और इतनी दुखद घटनाएं उनके परिवार में होती हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो उनका जीवन बेकार हो जाता है। अभी एक परिवार मिला मेरे को, एक ही बच्चा था उसको, और वो मैं समझता हूँ जबलपुर में शायद कुछ नौकरी कर रहा था, पढ़ रहा था, सिवनी रोज अप डाउन करता था, पैसे वाला परिवार था। बच्चे ने डिमांड की, बाबूजी मुझे केवल एक मोटरसाइकिल चाहिए। उन्होंने कहा फोर व्हीलर ले ले। नहीं, मैं अप डाउन करूंगा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल उसने लेके दे दी। बच्चा अकेला था, जो डिमांड करता दे देते हैं माँ बाप। मोटरसाइकिल दिया और एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और तुरंत मोटरसाइकिल से शरीर छोड़ दिया उसी समय। देखते ही उसके घर में क्या हालत हुआ होगा। ज्ञानी परिवार था, बहुत संभाला अपने आप को, बहुत संभाला, लेकिन फिर भी बैठते हैं तो थोड़ा आंसू भर आते हैं, नैन गीले हो जाते हैं। तो मेरे साथ आके बैठा, उस पिताजी आया, माताजी तो सामने नहीं आई, माताजी शायद बहुत रोती होंगी। तो पिताजी आए तो बात करने लगे, कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़े नौकरी है, इतना पैसा कमाया है, क्या करूं भाई जी, बंद कर दूं सब कुछ, मैंने तो उसके लिए सब कमाया ना, किस लिए सब? ऐसे कह के वो भी भर गए। मैंने कहा कि देखो हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, पार्ट है, उसको बताया सुनाया। कहता है ज्ञान तो मेरे पास भी है, ज्ञान की कमी थोड़ी है, बहुत कुछ है सबके पास, लेकिन जब ये पेपर आया है तो उसका सामना करना मेरे लिए बहुत असंभव लगता है, संभव नहीं लगता है, नींद ही नहीं आती, रात रात भर ऐसे ही सोच सोच करके ऐसा लगता है जैसे डिप्रेशन में चला गया हूं। मैंने कहा अच्छा मधु बनाओ, मधु बनाओगे तो आपको शक्ति मिल जाएगी। बहुत बाबा ने ऊंचा ज्ञान दिया है, लेकिन ऐसी परीक्षाएं हमारे मन की स्थिति को इतना डगमग कर देते, और आएंगी, कलयुग है, अंतिम समय है, हिसाब किताब है, किसका किसका कितना समय, किसका कितना कितना समय है। ऐसी अवस्था हमारी बन जाए जो ये दिखाई दे नाटक चल रहा है, ये खेल चल रहा है, और इस खेल के अंदर ये आत्माएं अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजा रही हैं, और जिस घड़ी ये पार्ट इनका पूरा होगा चली जाएंगे। अगर हम उन पर आधारित हो गए, डिपेंड हो गए, और वो अचानक चले गए, तो फिर सहन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबको ये ध्यान देना है। बाबा कई बार कहते हैं अंत समय और कोई चीज काम नहीं आएगी, न पैसा काम आएगा, न दुकान काम आएगी, न बिजनेस काम आएगा, न पद पोजीशन काम आएगी, काम आएगी अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति। आप सब ये नोट करके रखो, अंतिम स्थिति मेरी कैसी होगी, वही मेरी प्रॉपर्टी है, वही काम आने वाली है। पेपर आया, मान लो आज भूकंप आ जाए जोर से, सब खत्म हो जाए। कई लोग जब भूकंप आते हैं, ये आया भुज का आया, तो करोड़पति लोग रोड पर आ गए, और जब उनको कोई चीज देने जाता था ना, तो रोते थे, लेते नहीं थे, कहते थे हम इतना दान किया है, हम इतने पैसे से संपत्ति से संपन्न रहे, आज मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने में शर्म आती है, मर जाना ठीक है, क्यों भगवान ने मुझे बचाया है। डिप्रेशन में चले गए लोग। ज्ञानी तो आत्माएं अपनी अवस्था को इतना बनाए, बाबा तो इतना समझा रहा है कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम समझते दूसरों के लिए होगा, लेकिन किसी के सामने कभी भी कोई ऐसा पेपर आए। ज्ञान योग का बल, पवित्रता का बल, निश्चय का बल, अपनी धारणाओं का बल, और सबसे बड़ा बल दुआओं का बल। हम सब अपने स्टॉक में जमा करें, खूब दुआएं लो, खूब जमा करो, सुख दो, समय पर साथ दो, मदद करो, कुछ ऐसा सफल करो जो आपके आगे कभी ऐसी परीक्षा आ जाए तो आपके आगे सब मदद करने के लिए हाजिर हो जाए। चिंता नहीं करो, हम साथ हैं आपके, और उस समय की अवस्था ऐसी हो, पार हो जाएगा, बाबा साथ है, बात आई है खत्म हो जाएगी, हो जाती, क्या करेंगे अगर रो धो के कितना समय बिगड़ के रखेंगे। तो हम सभी इस समय समय अनुसार पेपर्स देख रहे हैं, कलयुग का अंतिम समय, और अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति होनी है, हिसाब किताब चुकते होंगे, जिन पर हम बहुत विश्वास रखते हैं वो भी विश्वासघात करके जा सकते हैं। ऐसे समय में हम सबकी स्थिति अवस्था एक रस रहे, अचल रहे, कुछ भी हो रहा है, बाबा कहता ना अटक, ना अटक, समझ रहे हैं, ना अटक, अटकना नहीं है, नाटक चल रहा है। तो नाटक को साक्षी दृष्टा स्थिति में देखने का अभ्यास करो, अवस्था अच्छी हो जाएगी, और अवस्था अच्छी होगी तो आपके सब कारोबार ऑटोमेटिक चलेगी, कोई सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक चले और बहुत अच्छी एक्यूरेट चले, सब काम समय पर हो, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं है, वो चला गया, इसके कारण नहीं हुआ, बाबा कहता ये भी तुम्हारी अवस्था की कमी है, एक जाएगा दस आ जाएंगे, आज यज्ञ में अगर एक अपसेंट होता है तो दस करने वाले तैयार हो जाते हैं। बाबा की संकल्प शक्ति, दादियों की संकल्प शक्ति, उनकी श्रेष्ठ अवस्था के आधार से कभी भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आती। तो हम सभी अपनी अवस्था पर ध्यान दें, एक रस रहें, मूड को एक रस रखें, बाबा के साथ कनेक्ट होके रहें, कंबाइंड होके रहें, साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करें, जो इतना सब बाबा ने पढ़ाया है वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई दे। और सबसे अच्छा गुण है, बाबा कहता है दाता बन करके रहो, लेता नहीं। उस दिन बाबा ने मुरली बड़ी अच्छी चलाई, भिखारी की, जायल भिखारी, कहता है मैं सारी दुनिया देख के आया हूँ, बाबा चक्कर लगा के आया, सब भिखारी, कोई भी ऐसा नहीं जो भिखारी ना हो, कुछ न कुछ मांग रहे हैं, और मैं अपने राज दरबार में अपने स्वराज अधिकारी बच्चों के बीच में आया हूं, वहां जब देखते ये भी रायल भिखारी है, ये भी कुछ मांग रहे हैं, तो क्या लगेगा, क्यों मांगे हम, दाता ने सब कुछ दिया है, मांगने की क्या जरूरत है, उसको याद दिलाने की क्या जरूरत है, ये चाहिए मुझे, अधिकार है, सिर्फ संबंध ठीक रखेंगे तो अधिकार पर अधिकार रहेगा, संबंध में जरा भी खटपट हो गई, नीचे ऊपर हो गया, संबंध में अगर स्नेह जुटा हुआ है, बहुत अटूट प्यार है, तो जो उसका है वो हमारा है, मांगने की क्या जरूरत है। तो देखना बाबा को, ये भी नहीं कहना बाबा मेरी अवस्था अच्छी बना दो, बाबा थोड़ी बना देगा, बाबा बनाने वाला नहीं, बनाना हमें ही पड़ेगा। और बनाने के लिए बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है, लिख के रख लो। जिस दिन मैंने परचिंतन किया उस दिन मेरा पतन हुआ, इसलिए ध्यान रखना है। खूब अच्छा अच्छा चिंतन करो, और अच्छा चिंतन के लिए रोज की मुरली पढ़ो, वरदान पढ़ो, स्लोगन पढ़ो, ज्ञानामृत पढ़ो, जो अच्छे अच्छे ज्ञान रतन है उनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करो, चिंतन में लाओ। जितना आपका श्रेष्ठ चिंतन होगा, स्वचिंतन चलेगा, आत्मा शुभ चिंतन से भरपूर हो जाएगी। और शुभ चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है तो एक आभा मंडल बन जाएगा, एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा बन जाएगा। और जो लाइट के घेरे में रहेगा, कोई भी परीक्षा पेपर आएगा उसको सहज पार कर लेगा। और जो संकल्प करेगा कारोबार होने लगेगी, करके देखना। मैं इसको अभ्यास करता हूं, किसी को कोई चीज कहने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा संकल्प करूं बाबा की याद में, सब ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे करने वाले। चला रहा हूं, इतनी अच्छी कारोबार चल रही है, तीनों जगह डिपार्टमेंट चल रहे हैं, ज्ञान सरोवर में भी है, शांतिवन में भी, यहां भी है, एक मुरली नहीं है, बहुत सारी कारोबार साथ में है। और यहां जो शरीर छोड़ता ना, वो हमारे डिपार्टमेंट में सेवाएं आ जाती है। बड़े बड़े गए भाई लोग, दादा भी सरतन गए, लच्छू दादी गई, दूसरे लोग गए, लिखने का काम था, ड्राफ्ट आते थे, मनी ऑर्डर आते थे, दादा संभालते थे। अभी राजू के ऑफिस में दे दो, हो जाएगा, आ जाता है मेरे ऑफिस में। मैं भाइयों कहता हूं, तुम कोई ना नहीं करना, मैंने केवल हाँ जी किया है, बाबा ने मुझे इतना आगे बढ़ाया है। कुछ नहीं कहा कभी दादियों को, उन्होंने कहा ये करना है, हाँ जी, कभी नहीं कहा मुझे नहीं आता, बाबा सिखाएगा, हो जाएगा, करने वाले आ जाएंगे। और सब कार्य चल रहा है इतना निर्विघ्न, इतना अच्छी तरह से चल रहा है, और कोई नहीं करता, कहता छोड़ दो तुम, मैं बैठा हूं ना, कर लूंगा, डिपेंड नहीं हो किसी पर। लेकिन 3 महीने से मुरली तैयार होना चाहिए, इतना सारे सेंटर्स को एक साथ सब जाएगा, पत्र पुस्तक तैयार होने चाहिए, इतना सारा योग्य खेती का, इतना पूरे भारत के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बहन बुलाती है, वो बहन बुलाती है, इधर भाई जी जरूर आना इधर, ठीक है, सबको खुश करूंगा। लेकिन अपने डिपार्टमेंट में कभी भी कोई ये नहीं कर सकता कि ये काम रह गया, ये घूम रहे हैं बाहर। बहुत एक्यूरेट रहना है, अलर्ट रहना है, ऑलराउंडर रहना है। अगर ये सब धारणाएं हमारे जीवन की अवस्था अच्छी है, और सब काम बाबा कराता है, ऐसा कराता है जैसे खेल खेल में करते हैं, भारी होकर के नहीं करते, ये काम पड़ा। पेंडिंग जिनके पास होता ना, उनका माथा भारी रहता है, हम पेंडिंग रखते ही नहीं है, जब आते हैं फ्री नहीं होते, बिजी होकर के सब कर डालते हैं। बाहर क्या हो रहा है, यज्ञ में क्या रहा हूं, मुझे क्या पता, जो हो रहा है वो कर रहे पाएंगे, जो करेगा वो पाएगा, और जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो अच्छी अवस्था के लिए किसी पर डिपेंड भी नहीं रहो, बहुत अच्छी ऑलराउंड सेवा करो, अथक होकर के रहो, एवर रेडी रहो, एक्यूरेट रहो, अच्छी अवस्था बन जाएगी। और अच्छी अवस्था के आधार से सब व्यवस्थाएं आपके ठीक हो जाएंगी, देखने वाले कहेंगे वाह क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, कोई चीज की कमी नहीं, प्रभाव उसका पड़ता है। तो हम सब अपने घरों की, अपने ऑफिस की, अपने सेंटर्स की व्यवस्थाओं को ठीक करें, और सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसे हमारे श्रेष्ठ संकल्प हों, शुद्ध संकल्प हों, संकल्पों के आधार से सब अपने आप चलेगा। ठीक है, ओके, ओम शांति। बाबा को याद करके संकल्प, शक्तिशाली संकल्प से बाबा का आह्वान करेंगे।
सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया, हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया, हवा साथ चल दे दुनिया से हम हो गए बेखबर।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, एक बार तालियों से धन्यवाद करते हुए दिल से अपना उद्गार पेश करेंगे। श्रेष्ठ अवस्था द्वारा कैसे हम अपनी व्यवस्थाओं को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम तो यही कहेंगे। चाहे जंगल में रहो या बस्ती में, चाहे लहरों में रहो या कश्ती में, चाहे महंगाई में रहो या सस्ती में, पर रहो सदा प्रभु की मस्ती में। क्योंकि जो रहता है प्रभु की मस्ती में तो चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो भाई साहब की तरह अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और अपनी व्यवस्था को भी श्रेष्ठ बनाएं।